اصلاح القلوب کے سلسلے میں اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. ہم محبت کا ٹاپک کر رہے ہیں جس میں سے حصول محبت الہی کے اسباب اور ذرائع کو دیکھ رہے تھے. پہلا سبب ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم پر تدبر اور تفکر کیا جائے اور اس طریقے سے تلاوت کی جائے کہ واقعی وہ دل پہ اترے, تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دیتی ہے. اور یہ سچ ہے, کسی کا کلام سنے بغیر اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی, تو قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دینا اور شریعت سے مخالف کاموں سے رکنا, یہ بھی ایک بہت سمپل سی بات ہے. آپ مانیں نہ مانیں, لیکن جس کی بات ہم مانتے ہیں اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. بعض دفعہ محبت پہلے ہوتی ہے اور اس محبت میں ہم کسی کی بات مانتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا میرے دل میں کسی کی محبت نہیں, مثلاً بیوی ہے تو کہتی ہے میرے دل میں شوہر کی محبت نہیں, آپ اولاد ہونے کے ناطے سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے میرے دل میں محبت نہیں, آپ ایک طریقہ کر کے دیکھ لیں, صرف 8 دن آپ کو کرنی پڑے گی آلموسٹ کہ آپ ان کی بات ماننا شروع کر دیں. جو مطبوع ہوتا ہے نا وہ بالآخر پھر اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہ محسوس کریں نا, تو آپ اس کی باتیں ماننی شروع کر دیں بغیر کسی جذبے کے, غصے میں مانیں, پڑھیں نماز غصے میں پڑھیں, رکھیں روزے کے کیا مصیبت رکھیں, آپ دیکھیے گا چند دن کے بعد آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کریں گے, کیونکہ بات مانی ہی اس کی جاتی ہے جس کو بندہ اہمیت دیتا ہے. تو جب ہم بات مانتے ہیں تو پھر اہمیت بڑھتی جاتی ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ فرض وہ ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور نفل وہ ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک وہ گفٹ ہے جو آپ ان کو دینا ہی تھا, کسی نے شادی پہ آئے تو دیتے ہی ہیں, خاندانی ہو تو پھر اور ہی مسئلہ ہے, تو وہ تو دیں گے, لیکن ایک وہ جگہ جہاں کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے اور کوئی آپ کو گفٹ دے دے. تو فرض تو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ایمان اور اسلام جتلاتے ہیں, لیکن نفل پڑھ کر ہم اللہ کو اپنی محبت جتلاتے ہیں. پھر ہم نے چوتھی چیز دیکھی تھی کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, دل سے بھی, زبان سے بھی اور جوارح سے بھی, یعنی جسم کے ہر عضو کو اللہ کے راستے میں لگا دینا. اور ذکر سے تو محبت بڑھتی ہے. تذکر کو اگر آپ اردو کے تذکرے کے معنوں میں لیں گے تو آپ کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ تذکرے سن سن کے بھی بعض دفعہ اس سے محبت ہونے لگتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اگلی چیز کیا دیکھی تھی جو آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, وہ کیا ہے, 5 نمبر کی چیز ہے, اللہ کی محبت پیدا کرنے والے اسباب میں سے 5واں سبب, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ اور معائنہ کرنا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم ان نعمتوں پہ غور نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, تو ہم ان کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جب ہم ان نعمتوں پہ غور و فکر کرتے, تدبر کرتے ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ اور میں اپنے جسم کے ایک ایک عضو پہ غور کر لیں اور اپنی وہ نعمتیں جن کو دن رات ہم انجوائے کرتے ہیں اگر ان کو سامنے رکھ لیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں محسوس نہ کریں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اس سے. آپ کہیں کہ جو پہلے تھوڑی تھی وہ غور و فکر سے بڑھتی ہے. اور آپ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ آپ کو ماں باپ کچھ گفٹ دیتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی اللہ سے اپنا تعلق دیکھنا ہے نا, تو ماں باپ سے تعلق کے ساتھ جوڑ لیں اس کو. آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے دیکھیں؟ ماں باپ سے. ماں باپ آپ کو نعمت دیتے ہیں, بچے کو دیا, کھانے کو دیا, اس کو کھلونے لے کر دیے, اس کو جھولے دیے, کچھ بھی دیا. فطری طور پہ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں, ابو کیوں اتنے پیسے کماتے ہیں میرے لیے, ماں اتنا کھانا کیوں بناتی ہیں, گھر کیوں صاف کرتی ہیں میرے لیے, آپ جب غور کریں گے نا تو آپ اپنے ماں باپ کی محبت دل میں محسوس کریں گے. اور یہی چیز ہے, نعمتیں ہیں, کسی کو اپنا بنانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دینا شروع کر دیں. تحادو تحابو, اس حدیث کو یہاں لکھ لیں, تحادو تحابو میں بھی لفظ خوب چھپا ہوا ہے, ہدیہ دو تو محبت ملے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدیے دیے, آنکھوں, کان, دل, دماغ, سب کے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں حب پیدا ہوتی ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے مجھے دیا کیوں دیا, تو وہ یقین کرے ایک ایک سانس کو, ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک گفٹ سمجھے گا. ہر لمحے میں اور آپ نعمتوں سے خوش ہو رہے ہیں, ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہیں. سوتے ہیں تو نیند نعمت ہے, جاگتے ہیں تو جاگنا نعمت ہے, کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑا ہونا نعمت ہے, چلتے ہیں تو چلنا نعمت ہے, سوچتے ہیں تو سوچنا نعمت ہے. آپ دیکھ لیں دن میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب میں کوئی ایک ڈفرینٹ مشینری چل رہی ہے. एक पिक्चर किसी ने भेजी, मैं खोल के दिखाई देती हूँ, पढ़ के सुना देती हूँ कि किस तरह से एक इंसान को अल्लाह ताला नेमते जो देता है, लेकिन हम गौर नहीं करते। आज हर एक कैमरे की आंख से चीज़ों को देखता है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जहाँ जाकर खुली आंख से देखना होता है, इतने तमाम से घंटों सफ़र करके साइड सीइंग पे जाते हैं, तो वहाँ भी हम कैमरे की नज़र से देख रहे होते हैं। वजह क्या? दूसरों को दिखाएंगे, दूसरों से शेयर करेंगे। जो खुली आंख से देखने का चीज़ों का मज़ा है, वो कभी भी बंद आंख के साथ देखने में वो मज़ा नहीं आता। बाज़ दफ़ा मैं ख़ुद अपने लिए इस चीज़ को सोचती हूँ कि अगर मैंने इन चीज़ों को इस वक्त भी कैमरे से ही देखना था, तो फिर मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, एक आपने हल्की सी तस्वीर ले ली, कर लिया, देख लिया, फिर उसके बाद गौर व फिक्र किया, लेकिन पूरा वक्त कैमरे की आंख से इन चीज़ों को देख लेना जो है, ये एक इंसान के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस है। ये जो आंख के कॉर्निया की चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमारी आंख के और कैमरे के अंदर क्या आपस में रिलेशन है। बाद सब आप देखिए कि लोग कहते हैं कैमरे की आंख से उसने देखा, हालांकि आपको पता है कि कैमरे की मेमोरी कितनी कम होती है, उसकी फंक्शनिंग, उसका काम करना हमारी आंख के काम करने के मुकाबले में बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि जैसे आप किसी चीज़ को भी आप लें, मतलब सेल फोन्स हैं, बाद सेल फोन में 16 GB होते हैं, लेकिन बाद सेल फोन में 116 भी होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। फ़र्क क्या है कि एक में आप जो मर्ज़ी स्टोर करते जाएं, वो अंदर ही अंदर चलता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करेंगे, तो कुछ दिन के बाद आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी और वो आपको मजबूर करेगा कि या तो आप पिछली चीज़ों में से कुछ डिलीट करें या फिर अपनी मेमोरी को इनक्रीज़ करें। अल्लाह सुबहाना ताला इंसान की आँख के अंदर, जिसके अंदर उसने गौर व फिक्र और तदब्बुर की चीज़ों को सामने रखना था, उसके अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने इतनी स्टोरेज रखी है। ये एक आर्टिकल है। अब बताओ कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। आपका कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा 15 MP होगा, यानी 15 MP छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो देखने में और उन चीज़ों को मदद करते हैं, जबकि आपकी आँख 576 MP है। कौन सी बड़ी है? आँख है ना। अब आपके हाथ में कैमरा है, आप उस कैमरे को तो एक नेमत समझ रहे हैं, लेकिन आप इस आँख को नहीं समझते और इस पर गौर नहीं करते। और ये जो बताया, ये इसी वजह से बताया कि गौर व फिक्र का यही तरीका है। इन नेमतों को लेकर हम नेमतें देने वाले को ना भूलें। फिर इसी तरह कहते हैं कि हर इंसान 1 घंटे में 1000 बार सांस लेता है। अगर इसको 24 पे कर दीजिए तो 24 घंटों में एक इंसान 24,000 बार सांस लेता है। आप अभी देखिए 10:35 है मेरी घड़ी में, 9:35 से लेकर अब तक कमोबेश आपने और मैंने 1000 दफ़ा सांस लिया। और आप देखिए, एक दफ़ा सांस अंदर जाता है, फिर एक दफ़ा बाहर आता है। क्या मुझे ये नेमत लगती है? जब सांस उखड़ता है, जब बंदा दुनिया से जाता है, तो उस वक़्त क्या होता है? और सिर्फ चंद सेकंड, शायद 25 से 30 के बिटवीन आता है, इतने सेकंड आप पर्पसली अपना सांस रोक लें तो आपकी मौत वाकई हो जाएगी। 10 सेकंड से ज़्यादा शायद हम सांस रोक नहीं सकते, उछू लगने लगता है। तो क्या हम इसको नेमत समझते हैं? क्या वो नेमतें जो हमें मिली हुई हैं वाकई मुझे नेमत लगती है? सच बताएं, हम इंसानों की ना कदरी तो कर ही लें, माँ बाप की ना शुक्री तो कर ही लें, क्या हम अल्लाह के भी ना शुक्रे तो नहीं हो गए? किसी ने कहा कि अगर तुम हर मिनट में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो तुमने तो सिर्फ सांस के अंदर जाने का शुक्रिया अदा किया, वापस आने का भी नहीं किया। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, वो कहते हैं कि अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र अदा करना, ये बजाते खुद फिर एक नेमत है, क्योंकि ना शुक्रापन एक ना फरमानी भी तो है ना। तो कहते हैं कि आप बता इस नेमत का शुक्र फिर कैसे करो। सुबहान अल्लाह। तो दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और उसको डालना, इससे कुर्ब आएगा। इसके अलावा आप किताबें पढ़ लें, लाख चीज़ें पढ़ लें, कोर्सेज कर लें, अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती। सूरत इब्राहीम आयत 34 में अल्लाह ताला कहते हैं, वाइन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम शुमार कर नहीं सकते। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते रखे हुए हैं। आपको पता है कि हर इंसान के ऊपर कितने फरिश्ते हैं? जी 10 फरिश्ते हैं, 2 आगे 2 बाएं, 2 साइड पे, 2 आँखों पे, 2 नाक के नतने में, कान की साइडों पे। कई दफ़ा आप कहते नहीं कि बच्चे को चोट लगते लगते बच गई, कई दफ़ा आप कहते हैं बिल्कुल आँख के करीब चोट लगी, आँख में नहीं लगी, वो फरिश्ता हाथ मार देता है। अब ये अलग बात है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें पहनाएं या उनके हाल हुलिये में ऐसे हों कि फरिश्ते दूर हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने इंतज़ाम रखा है। इसी का तذکرہ सूरत रात की आयत 11 में है, लहू मौक़िबातुम मिन बैन यदैही फमिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इसके लिए इसके आगे और इसके पीछे यके बदीगरे आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। तो अब मैं और आप अपनी हिफाजत तो नहीं कर सकते ना, दिन में तो हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और वो भी तो आप देखिए ना, हम आगे से आने वाली चीज़ से बच सकते हैं, पीछे से आने वाली से कैसे बचें। आप गाड़ी चलाते हैं, आगे से हटाते हैं, गाड़ी आ रही है, रोड है, पत्थर है, इधर से उधर, पीछे वाला आके एकदम टक्कर मार देता है, पीछे वाला अपने आगे देख रहा है। इसी बात को सूरह अंबिया आयत 32 में अल्लाह ताला ने कहा, कुल मैं यकलऊकुम बिललैली वन्नहारि मिनर रहमान, कह दो कि वो कौन है जो रात और दिन में रहमान से तुम्हारी हिफाजत करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि डॉक्टर्स कहते हैं कि हर घड़ी हर लम्हे इंसान को बीमारियों का ख़तरा होता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं, पोल्यूशंस भी है, और जिसको आप एलर्जी कहते हैं या कुछ पोलन कहते हैं, हर तरफ तो हमारे चीज़ें चीज़ें हैं, हर तरफ है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें इन तमाम चीज़ों से रोक देती है। फिर इसमें दुआएँ भी काम आती हैं, लेकिन जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें बीमारियों से बचा के रखा है, उतना आप देखेंगे कि नेमत और बढ़ेगी। सूरत यूसुफ आयत 64 में अल्लाह ताला कहते हैं, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा। हम तो शायद बेशौरी में बोलते हैं अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह वाकई खैरु हाफिज़ा है, वहु अरहमुर राहिमीन, जो उसका रहम है हमारे ऊपर। फिर एक और चीज़ देखिए जो अल्लाह की नेमत है, और वो क्या है कि वो हमारे गुनाहों पर हमें पकड़ता नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ना कि अगर मैं लोगों को उनके हर गुनाह पे पकड़ लूँ तो ज़मीन पर एक चलता फिरता ना रहे। ग़ालिबन ये सूरत यूसुफ से पहले जो सूरत है ना उसमें, यानी 12वें 13वें पारे में सूरह हूद, उसी के अंदर कहीं आता है ग़ालिबन कि अगर अल्लाह बंदों को उनके हर गुनाह पे पकड़ ले तो कोई ज़मीन पे चलता फिरता ना बचे। ये क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? इधर हमने झूठ बोला, उधर पीछे से थप्पड़ पड़ा, गाली देने लगे, ज़ुबान कट गई, हराम की तरफ आँख पड़ी तो एकदम आँख में खिंच पड़ी, कानों से गिबत सुनी तो एकदम कानों में से खून निकलने लगा। क्या ये मुमकिन नहीं था? ना सिर्फ ये कि उसने हमें सज़ाओं से बचाया, बल्कि उसने रुसवा होने से बचा दिया, शर्मिंदा होने से बचा दिया, तो हम पर उसकी रहमतें ख़त्म नहीं होती। हर दिन हम गुनाह करके सोते हैं, अगला दिन फिर नेमत से शुरू होता है। किसी ने बड़ी अच्छी एक कोटेशन भेजी कि सोचो अगर कल तुम हर उस चीज़ के साथ उठो जिसका कल तुमने शुक्रिया अदा किया था, सिर्फ वो नेमत आज सुबह उठ के मिलेगी। तो आधी चीज़ें तो हमारी वैसे ही गायब होंगी, हमारे जिस्म के तो कितने पुर्जे ही गायब हों, क्योंकि फरिश्ते कह देंगे कि इसने तो कोई इसका हक ही नहीं अदा किया। कब आखिरी बार हम नेमतों के एहसास के साथ अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं? इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि अपने दिल में नेमतों को लेकर चलें, और आप देखिए कि ये जो हमारे गुनाह है ना, इसके ऊपर तौबा करने की तौफीक देना, ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी। किसी ने कहा कि कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता, चाहे आप लाख कहें ना मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है पाकिस्तान में, और मेरे बाप बुला रहे हैं, और मेरे शौहर इंतज़ार करते हैं, जितना मर्ज़ी आप मोहब्बतों को तोड़ लें, सबसे ज़्यादा कायनात में अल्लाह बंदे का इंतज़ार करता है। कब? जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। गुनाह करके एक बंदा पीछे हो, पुलिस तो उसको ढूंढ ही रही होती होगी कि ये जुर्म करके गया, इसको तो पकड़ो, लेकिन अल्लाह ऐसे मुजरिमों का रास्ता देखता है। और एक सहरा में खोई हुई ऊँटनी के मिलने से ज़्यादा अल्लाह को उस वक़्त खुशी होती है जब एक बंदा अपने मामले को पाक साफ कर लेता है। लेकिन बात पता क्या है, हमें गुनाहों के लगे हुए धब्बे नज़र नहीं आते। कितनी हैरत की बात है और लम्हा फिक्री है इंसान के लिए कि इंसान चेहरे को तो साफ़ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। तो जब हम गुनाह करते हैं ना तो हमारा दिल गंदा हो जाता है, काला नुक्ता लग जाता है हदीस की रोशनी में। फिर इसी तरह हज़रत अबू मूसा से रिवायत अल्लाह के नबी की है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई अज़ियत पर सब्र नहीं कर सकता। सब्र करते हैं कैसे, ये तो इंशाल्लाह जब हम इस किताब का टॉपिक सब्र पढ़ेंगे तो उस दिन पता चलेगा। हम तो इसी पे बड़े हैं कि हम साबिर हैं, लेकिन अल्लाह तो सबूर भी है, मुस्तबिर भी है, उसके तो सब्र के कई मुख्तलिफ रंग हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लोग अल्लाह के बेटे करार देते हैं, अल्लाह ताला उनको रिस्क देते हैं। लोग अल्लाह के पार्टनर्स बनाते हैं, अल्लाह के साथ हेल्म बहुत है। तो लिहाजा गौर कीजिए इस सारी बात को सुनकर, अब मेरा आपका अमल क्या हो, खुर्दबीन ले लीजिए, दुनिया की जो सबसे छोटी चीज़ को देख सके और उसको अपने सर से पाँव से लेकर ज़िंदगी के हर हाल पर डाल के देखिए। इस वक्त मेरा ये बात कहना भी आपके लिए एक नेमत है। ये बात कहे बगैर भी टॉपिक पूरा हो सकता था। कोई खैर का जुमला सुनते हैं ना, अभी तफसीर आप सुन रहे थे, हर रूम में अलग अलग चल रही थी ना, मैं इधर उधर मेरे कानों में पड़ता है, मैं देख रही होती हूँ क्या होता है, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरा कुरान कितनी बड़ी नेमत है। सुबह ये आप सुबह सलाम में जो बातें सुन रहे थे तो मैं बाहर बैठ के सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वाकई ये कुरान, ये सवीरुल जन्ना, यही कोर्स है, ये करने बैठे हैं ये। तो मुझे यकीन नहीं आता कि अल्लाह का कुरान क्यों हर दफ़ा नया लगता है। मुझे नहीं उसमें से एक बात लगी कि ये मैंने कही भी है। अगर मैं अपनी आवाज़ ना पहचानूँ तो मैं नोट्स लेने लग जाऊँ कि ये मैंने आज पहली दफ़ा सुनी है। ये अल्लाह का कलाम है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। क्या हम रहमान के इस कुरान को एक नेमत समझते हैं? इसलिए नेमतों को कभी फॉर ग्रांटेड ना लें, पटख के पढ़ेंगे। जो नेमत की कदर नहीं करता, अल्लाह क्या कहते हैं, वलाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, सूरत इब्राहिम की आयत 7-8 है कि वाइस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकर तुम, और जब तुम्हारे रब ने पुकारा कि अगर तुम शुक्र करोगे लाजीदन्नकुम, और दूंगा। वो कैसे देता है? और नेकियों के मौके आते हैं, आप और मौके लेते हैं। बस आप में से कई लोगों ने 6-7 दफ़ा सबीलुल जन्ना सुन लिया होगा अभी तक, कहीं ना कहीं इधर से उधर, उस क्लासेस में, उस क्लासेस में। ये क्या है लाजीदन्नकुम? और मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर आप फिर दोबारा आप सुनने बैठ जाएं तो आपको उसमें कई चीज़ें दिखेंगी, और आप ख़ुद ही इस चीज़ का इकरार करते हैं। कितने लोग इसका इकरार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले आप स्टूडेंट बन के सुनते थे, अब आप कोऑर्डिनेटर बन के सुनते हैं, अब आप टिक के बैठ के सुनते हैं, अब आपको एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा होता है। पहले आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए। तो ये नेमते हैं अल्लाह की, इस पर ख्याल करें। और वलाइन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, और अगर तुम ना शुक्री करते हो, मेरा अजाब बड़ा शदीद है। आप क्लास में बैठे सेलफोन से खेलें, इन अजाबी लशदीद, अल्लाह ऐसे दिमाग इस क्लासरूम से निकालेगा आपको फिक्र ही नहीं होगी। अपने सेलफोन, इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ जो लोग नए आ रहे हैं अभी से आदत डाल लें, सेलफोन बाहर रिसेप्शन पे दे के आए। मुझे डे 1 से ही रूल याद है यहाँ का कि रिसेप्शन पे दे दें और अपना नंबर दे दें, कोई इमरजेंसी कॉल आनी है इंशाल्लाह सिस्टर आपकी हेल्प करेंगी, आपकी फ़ोन कॉल लेंगी। लेकिन आप एक हफ़्ता अपने से आजमा लें, साहब स्टाफ के भी और दूसरे भी। मैं अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे करके लाती हूँ, अभी भी मेरा फ़ोन सामने है, मेरा 24 घंटे हाथ में होता है, सोते को छोड़ दीजिए अगर, इल्ला माशाल्लाह। क्यों? ये मेरा दफ्तर है, ये ऑफिस है, ये कोई अब फ़ोन नहीं रह गया, लेकिन इसमें मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वजह के मैं अल्लाह के सामने फोकस्ड होना चाहती हूँ। तो आप सर अपने सेल फोन सारे ही 1-2 दिन अपने रिसेप्शन पर जमा करा के, सारा स्टाफ, आप देखिए आपके स्कूल की कारकर्दगी बढ़ जाएगी। हम जब बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं ना तो हम उस नेमत को बुरा लेते नहीं। कितनी खपाई कर कर के घरों से आते होंगे इधर, कितने चीज़ें इधर की उधर करके आते हैं, और इधर आके आपका दिमाग घर चला जाता है। उधर क्या हो रहा है, बच्चा उठ गया, मियाँ किधर है, अच्छा पहुँच गया, जो अफसर भी पहुँच गए होंगे, वल्लाहु खैरन हाफिज़ा, आपने ज़रूर उनका हालचाल पूछना है और उनको डिस्टर्ब करना, फिर थोड़ी देर बाद वो भी आपका पूछेंगे। तो ये ताल्लुक़ काटने पड़ते हैं, और मैंने इसको कई मुख्तलिफ तरह से आजमाया जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला की नेमतों को फॉर ग्रांटेड ना लें, अल्लाह ले लेगा हमसे वो नेमतें। फिर इसी तरह आप देखिए अगली चीज़ जिसे अल्लाह की मोहब्बत है, जो बहुत ही अहम है और बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छी तरह समझ आती है, वो क्या है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और सिफात उज़्मा पर गौर व फ़िक्र करना, अल्लाह सुब्हान ताला के नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स पर गौर व फ़िक्र करना, दिल के दरीचे खोलकर अल्लाह के अस्माल हुस्ना और उसकी सिफात उज़्मा का मुतालिया और इन पर गौर व फ़िक्र करना, अल्लाह की मोहब्बत को पाने के सिलसिले की एक कड़ी है। आप देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत में हैबत और किबरियाई का पहलू होता है। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ये नहीं कह सकते जैसे हम अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं वैसे, नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का एक सहर तारी होता है। अल्लाह छोटी ज़ात थोड़ी है, मैं और आप अपने पे इसको लेके कैसे कह सकते हैं हाँ ठीक है अल्लाह ताला से मोहब्बत हो रही है। जब एक इंसान अल्लाह ताला के नामों पे गौर करता है ना तो उसका दिल अंदर से बैठने लगता है, और आज भी वो कैफियत याद है कि जो उस्माल हुस्ना पढ़ाते हुए मैं अपने दिल में महसूस करती थी। मैं बिल्कुल अकेली होती थी, मैंने अमेरिका में ये सीरीज़ करवाई थी और ऑनलाइन पे एवरी थर्सडे हम रब का पैगाम मेरे नाम क्लास के थर्सडे सेशंस में करते थे। बिल्कुल मैं अकेली थी उस वक्त घर में, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसे ही टाइम होता था क्योंकि वो कोर्स सिर्फ ऑनलाइन कोर्स था, तो मैंने पढ़ाना होता था ना, उससे पहले मेरा दिल ऐसे डूबता था जैसे किसी ने टेस्ट करवाने के लिए किसी सीटी स्कैनर से गुजरना हो। ये बड़ा एक कैफियत आती है ना कि खौफ है, एक दिल बैठना। मेरी आप उसमें आवाज़ नोट करें, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। मुझे ऐसे फील होता था कि मैं गलत ना कह दूँ, मैं अल्लाह के बारे में कोई एग्जेजरेशन ना कर दूँ, मैं कोई गलत बात ना मेरे मुँह से निकल जाए। जो उसके बाद मोहब्बत महसूस हुई ना, वो एक ज़िंदा मोहब्बत थी। आप जिस चीज़ को जानते ही नहीं, आप उससे मोहब्बत क्या करेंगे? सीधी सी बात है। देखिए, चीज़ का नाम है आईफोन, क्या इस नाम के साथ बच्चों के अंदर के तबक भी नहीं रोशन होते? लेमोजीन, लैंड क्रूज़र, फरारी, ये सिर्फ नाम है ना। और आपको बताऊँ ये फरारी क्या बला होती है, बच्चे आपको बताएंगे इधर आए, वो ऐसे खुलती है, उसकी छत खुलती है, वो भागती है, वो दौड़ती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके इस एट्रीब्यूट्स पे गौर किया, उन्होंने उसके नेम्स पे गौर किया। जिस चीज़ का आप एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स पे आप गौर व फिक्र करते हैं। एट्रीब्यूट समझ रहे हैं ना, उसकी सिफात है। जब तक अल्लाह की सिफात नहीं पता, वल्लाह ही मैं कह सकती हूँ कि हम उसका हक अदा कर ही नहीं सकते। और आज तक हमने जिस अल्लाह को पूजा था ना, वो रब था कि जिसकी सिफात को हमने महसूस नहीं किया। जितना अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आएगी, उतना उसका फजल व करम हमारे दिल में आएगा, उसकी कदर व कीमत आएगी, अल्लाह ताला की सिफात की हम कदर करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला का रोबदारी होगा, मोहब्बत की चाशनी होगी, लज्जत मिलेगी, मार्फत मिलेगी। और जितनी अल्लाह की मार्फत आपके अंदर आएगी ना, तो फैज़ान भरता जाएगा, फैज़ देने वाले बन जाएंगे। जब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पहचानते, आप उससे फ़ायदा नहीं लेते। कई लोगों के पास कंप्यूटर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसको यूज़ कैसे करना है। नया सेलफोन लिया आपने, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना आता। तो सारी बातों को जहन में रखिए कि जब तक किसी चीज़ को पूरी तरह उसकी खूबियों के साथ नहीं जानते, उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। किस बात की मोहब्बत? किसकी? कि वो करीम है, वो अलवहाब है, वो अलतवाब है। कल हम कहीं गए, किसी क्लास में थे, तो वहाँ दर्स था, तो उससे पहले उन्होंने अतवाब की तफसीर चलाई हुई थी ना, तो मुझे लगा कि बस सबसे खूबी अल्लाह की तवाब होना ही है। कई दफ़ा आप देखिए दूसरी जगहों पे कुछ और सुन, जो खूबी पढ़ती सुनती हूँ, लगता है बस यही करने की ज़रूरत थी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह आप देखिए कि इमाम अतबा का कॉल है कि जिस शख्स को अल्लाह की मार्फत तक रसाई मिल जाए, तो समझ लो कि वो अल्लाह का मोहब हो गया। मोहब कौन? प्यार करने, महबूब की जमा। महबूब कौन होता है? मफ़ऊल का वज़न, जिससे मोहब्बत की जाए। तो मोहब मुफ़ैल का वज़न, इस्म फ़ाइल का वज़न जो होता है, मोहब्बत करने वाला। इसी तरह कासिम जूही कहते हैं कि मोहब्बत की असल व बुनियाद मार्फत इलाही का फैज़ान है। ये वो सदर दरवाज़ा है जहाँ से औलिया अल्लाह और मुखलिस लोगों को अपने महबूब के दरबार तक रसाई मिलती है। बिलाशुबा महबूब तक पहुँचने का यही रस्मी दरवाज़ा है। दिल में होता है ना जिससे मोहब्बत, तो अब हम उसकी तरफ पहुँचें भी, उससे कुर्ब करें, तो उसका रास्ता क्या है कि उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, उसके नाम को देखा जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, उनको लज्जत मिलती है, सरूर मिलता है। फिर वो इस सरूर को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें अल्लाह ताला की और भी मार्फत मिले। किसी हाल में वो सैर नहीं होते, जैसे खाते जाएं और पेट ना भरे वाली कैफियत। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र, उसके नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एक समंदर है। वो ख़ुद कहता है सूरत कहफ में, आप हर जुमे पढ़ते होंगे, कि अगर अल्लाह की सिफात को लिखना चाहो, कलिमात तुम्हारे ख़त्म हो जाएं, स्याही ख़त्म हो, फिर भी तुम लिख नहीं सकते। हर दिन उसकी सिफात बढ़ती जा रही हैं। ये आप कहते हैं ना कि साइंस तरक्की कर रही है, यकीन कीजिए ये अल्लाह के नेम एंड एट्रीब्यूट्स खुल खुल के सामने आ रहे हैं। आपने 99 सुने थे, आज से 10-20 साल से 200 नाम डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और आप जितनी मैथोलॉजीज और साइंसेज और फलां और फलां रहे, हर एक के अंदर से अल्लाह का एक और रूप दिख रहा है। क़यामत तक जिस तरह साइंस बढ़ती रहेगी, कायनात के राज खुलते जाएंगे, अल्लाह की सिफात बढ़ती जाएंगी। वो कौन है? वो खालिक है, वो मालिक है। और इस तरह फिर एक इंसान उसकी खूबियों को पाते पाते समझता है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, सिर्फ बात समझाने के लिए कर रही हूँ, कोई तमसील मुराद नहीं है। एक माँ बाप अपनी बच्ची का रिश्ता करते हैं एक लड़के को अच्छा समझ के। अब उनके जहन में क्या था कि अच्छा लड़का है, ख़ानदानी है, ये है, नेक है, नमाज रोज़े का पाबंद है, कर दिया। अब वाकई अगर वो लड़का अच्छा था जैसे उन्होंने सोचा, तो जितना वो लड़की उस शौहर के साथ रहेगी ना, हर दिन उसकी खूबियाँ बढ़ेंगी। होगा क्या कि वो जाएगी तो कहेगी वो तो उससे भी अच्छे हैं जो हमने सुना था। फिर 6 माह बाद कोई कहेगा सुनाओ बेटा कैसी हो, कहेगी अब क्या बताऊँ, मैंने तो एक और खूबी उनकी मिल गई। शादी के 10-20 साल भी गुजर जाएंगे ना, तो हर दिन उस शौहर की खूबियाँ खुलती जाएंगी। ये है मार्फत होना। قرب بڑھتا ہے تو انسان کی خوبیاں دکھتی ہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی لے لیجئے، اللہ میں تو ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کسی انسان کے اچھے ہونے کا نام لے کر آپ اس سے قریب ہوئے، اب قریب رہے تو پتہ چلا تو یہ بھی خرابی تو وہ بھی خرابی، پھر گھر ٹوٹتے، پھر بگاڑ پھیلتا، کیونکہ قاضی دور سے تو یہ بتایا گیا تھا لیکن اندر تو یہ خامیاں موجود تھیں۔ بس جتنی قربت اتنی ایک انسان کی اصل کھلتی ہے، تو اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی خوبیوں کو پانا ہے تو اس کا قرب پانا ہوگا، پھر علم اور معرفت کے خزانے انسان پر کھلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق اور اس کی معرفت کے راز یہ کھلنے لگتے ہیں، پھر محبت اور بڑھتی ہے۔ اور پھر اس طرح سے جب ایک انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر بھی ساتھ ساتھ کرتا جائے، تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرف اللہ کی خوبیاں بڑھتی ہیں، دوسری طرف بندے کا شکر بڑھتا ہے، پھر دن بہ دن محبت پکی، کہتے ہیں نا پکی سچی دوستی ہو گئی۔ یہ پکی سچی دوستی تھی جس کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے نام دے دیے، اور بعض دفعہ پھر اس میں شریعت کی حدوں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک مومن سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رمضان سے پہلے لندن میں ایک پورا ٹاپک کیا تھا میں نے، آپ سن کے دیکھیے گا، جنہوں نے بھی اس وقت سنا یا بعد میں تھے تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ آج تک تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ اولیاء کرام کے خلاف ہیں، آج پتہ چلا کہ آپ نے جو اولیاء کرام کی خوبیاں اور جو باتیں بتائی ہیں وہ تو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں، سوچی بھی نہیں۔ سیریز چل رہی ہے ہماری ایک اسلام اے ٹو زی، جس میں پوری شریعت کو کور کرے، اسی کا ایک حصہ کہیں آپ کو ملا، میرا لو ایک سوا گھنٹے کا درس تھا کہ آج دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں وہ کیا۔ بالکل آپ کو ولی اللہ بننا ہے، ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کرام کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کون ہیں؟ الذین کانوا یتقون، آمنوا کے بعد کانوا یتقون۔ تو لہٰذا آپ ولی اللہ بنیں گی کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو غور و فکر سے دیکھیں گی، نعمتوں کے ساتھ اس کو دیکھیں گی، اور ہر چیز کو دیکھیں، وجود کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، کائنات کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے اس کی خوبیوں کے سحر میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بھیگیں گے کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں گے۔ مثلا دیکھیں کہ انسان کس سے محبت کرتا ہے، ہم ایسے سوچتے ہیں، سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ ایک انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، فطری بات ہے، ایتھک سینس اللہ نے رکھی ہے۔ بچہ بھی کسی چیز کو دیکھے تو کہتا ہے یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، آنٹی آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے رکھی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اب دنیا کی سب سے خوبصورت چیز جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن اس کا رنگ ہمیں مختلف چیزوں میں دکھتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو خوبصورتی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کو زمین پہ جو حسن تھا اس کا آدھا حصہ ملا، اب یہ ذاتی حسن کس نے دیا حضرت یوسف کو؟ دیکھیے ایک آرٹسٹ کے پاس گن ہوتا ہے تو وہ اس کو کینوس پہ ڈالتا ہے نا، تو یوسف کو حسن دینے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا، کیوں جب جنت میں جنتی جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، اتنے محب ہو جائیں گے کہ دنیا اور اس کے بیچ کی ہر چیز سے غافل ہوں گے اور کہیں گے اللہ ایک بار پھر دے دے، جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اور جنتی اس سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ اللہ ایک بار پھر اپنی خوبصورتی دے دے۔ اب آپ سوچئے کہ جب ایک اللہ کی خوبصورتی کو ایک انسان آخرت میں دیکھے گا تو سب چیزیں بھول جائے گا۔ تو معرفت کے درجے پہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام الجمیل کی جا کے تفسیر سن لیں تو وہ خوبصورتی آپ کو دیکھے گی، آپ پھر پتہ چلے گا یہ پھول اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں، یہ پتیاں اتنی خوبصورت کی ہوتی ہیں، تو لہٰذا پھر اللہ سے اس طرح کی محبت آنے لگے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کریم۔ انسان کس انسان کو پسند کرتے ہیں؟ جو کریم ہو، جنرس ہو، دینے والے ہی لینے والے ہوتے ہیں، گیورز آر ٹیکرز یا ٹیکرز آر گیور۔ کیسے؟ اب آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ بہت جنرس ہے، کھلاتا پلاتا، خدمت گزار، آپ کے دل میں محبت ہوگی تو آپ اللہ پہ لے لیجئے۔ سب سے زیادہ کون کھلاتا ہے؟ سب سے زیادہ کون پلاتا ہے؟ اور الکریم کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ انگور کو ام الکریمہ کہتے تھے عرب لوگ، انگور کو کیوں کریم کہتے تھے یا کریمہ کہتے تھے؟ شراب کے نشے میں لوگ جنرس بہت ہو جاتے ہیں، لوگوں کو صدقہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھوڑو، ایک اچھے کام کو کرنا غلط راستوں سے وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام۔ پھر آپ دیکھیں الجلیل، جلال والا، کبھی کسی کا جلال آپ نے محسوس کیا ہو؟ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک جلال ہوتا ہے، خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک دم جلال میں چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب پہلی دفعہ آپ جاتے ہیں، وہ کالا کمرہ کیا ہے، کعبے کی ایک چادر ہی ہے نا، لیکن اتنا اس میں جلال ہے۔ رات کے وقت آپ حرم میں داخل ہوں، آپ کو ایسے لگتا ہے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ سب دینے والا کون ہے؟ الجلیل۔ تو آپ دیکھ لیجیے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام التواب، 100 لوگوں کے قاتل کو بھی اس نے بخش دیا، तो बाकियों को क्यों नहीं बख्शेगा, ये आपको मुझे सोचना है। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफ़ात पे गौर व फिक्र करते जाएंगे उतना होगा। तो अल्लाह ताला की हर सिफ़त उसी तरह कामिल है जैसे कि वो खुद कामिल है। आप और मैं जितना सोचें, और आप देखिए जहाँ से मर्जी सुने, इंग्लिश में बहुत सारे लोगों की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कुछ भी, लेकिन आप असमौल हुस्ना की तफसीर सुने। आप कहेंगे आप बार बार तफसीर की बात करते हैं, हम तो इसको ज़ुबानी याद करते हैं। ज़ुबानी याद करना कब फ़ायदा देगा, करें याद, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब उसकी सिफ़ात को समझेंगे। बग़ैर सिफ़ात के समझे सिर्फ नामों को पहाड़ों की तरह या राइम्स में पढ़ लेना इतना फ़ायदा नहीं देता। तो इसको समझ के पढ़ें, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज़्यादा रखेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला की और बहुत सारी सिफ़ात है, लेकिन आप और मैं आखिर में यही कह सकते हैं कि हमारा छोटा सा ब्रेन है ये अहाता कर ही नहीं सकता अल्लाह ताला की सिफ़ात का। तो इसके लिए एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा समझे और गौर व फिक्र करेगा, अल्लाह की मोहब्बत भी होगी, और जिस दिन अल्लाह की मोहब्बत का रंग गहरा होगा ना, तो बाकी सारे मरहले आसान होंगे। मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत ही की कमी आज अल्लाह से, रसूल से और दीन से, फिर उसी के नतीजे में इंसानों से नहीं मिलती। फिर इसका एक और डिफरेंट एंगल आखिर में देखिएगा कि जिससे मोहब्बत होती है ना, बाज़ दफ़ा फिर इंसान उसको लाड भी दिखाने लगता है, उसके आगे फिर झुकता है, फिर उसके आगे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इसी का नाम तज़ल्लुल है, इसी को कहते हैं या कनाबुदू। तो इबादत के मानी अरबी ज़ुबान में खुशू, खुदू, तदल्लुल, आजजी, इनकसारी, अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाना, फिर उसके फ़ैसलों पर राज़ी होना, उसकी चौखट पर पड़ना, ये सारे जज्बे अबूदियत आते ही तब हैं जब आप अल्लाह ताला को उसके नामों और उसकी सिफ़ात के साथ जानने लग जाते हैं। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत दे दे, किस रंग में, कि हम अल्लाह ताला को लेकर चले, अल्लाह ताला की बात को समझे। अच्छा, दो चीज़ें वो आगे आएंगी तो वहाँ ही देख लेंगे, लेकिन यहाँ भी उसका तذکرہ है। एक होती है अल्लाह ताला की मोहब्बत, ठीक है, और एक होती है अल्लाह ताला की खशियत। अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार कौन होते हैं? आम लोग। कवाली पढ़ के भी कहेंगे ना अल्लाह की मोहब्बत आ गई, और वो हम पढ़ के भी कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत बहुत करते हैं, सर से पांव तक भी अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो लेकिन वो लफ्ज़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो खशियत वाली मोहब्बत है ना, वो उलमा के साथ होती है। अगला टॉपिक सारा इसी पे, वहाँ डिटेल होंगी, लेकिन इशारतन ज़िक्र कर दिया कि मोहब्बत में बदतमीज़ नहीं होना, मोहब्बत में सर नहीं चढ़ना। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाला अल्लाह से मोहब्बत की रेसिपी को बिल्कुल बैलेंस रखता है, ये समझ लीजिए। मोहब्बत भी तो एक ख़ास हद पे करनी है ना। बाज़ लोग अपनी मोहब्बत की वजह से बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। तो इसी तरह के जो जज्बे अल्लाह ताला के साथ हमारे हद से बड़े होते हैं ना, फिर ये हमें शिर्क तक ले जाते हैं।